ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। ये सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयतें हैं जो अभी आपके सामने पढ़ी गई और इसके नुजूल का वाकया अगली मजलिसों में तफसील से आपके सामने बयान किया जा चुका है। ये कुरान पाक की सबसे पहली आयतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई और इनके मुतालिक कुछ वजाहत अगली मजलिस के अंदर आ चुकी थी। यहाँ आज की मजलिस में एक खास चीज की तरफ मुतवज्जे करना मकसूद है कि इसकी पहली ही आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सबको पैदा किया। ये इकरा का माना होता है पढ़ना और ये खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किया गया था और चूंकि आप उम्मी थे इसलिए आपने उस मौके पर उसके जवाब में ये भी कहा था माना बेकारीन में पढ़ा हुआ नहीं हूं। बहरहाल यहाँ ये बतलाना है कि देखो जो पहली वही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और सबसे पहला हुक्म जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दिया गया वो यह है पढ़ो यानी इल्म हासिल करो। ये पहला हुक्म है जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इस वही के जरिए से दिया गया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके वास्ते से पूरी उम्मत को और पूरी इंसानियत को। तो गोया इससे मालूम हुआ कि हर इंसान का सबसे पहला फरीजा और सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि वह इल्म हासिल करे। न कोई काम हो सकता है इल्म के बगैर, न कोई बात हो सकती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल इल्म के अंदर बाब कायम किया है, बाबुल इल्म कबलल कौले वल अमल, के किसी बात को करने से पहले और किसी काम को करने से पहले इल्म हासिल करना और जानना। भाई मैं आपके सामने किसी मौजू पर कोई बात करना चाहता हूं तो जब तक कि उसका इल्म मैंने हासिल न किया हो तो मैं बात नहीं कर सकूंगा। मैं कोई काम करना चाहता हूं, कोई अमल करना चाहता हूं, तो उस अमल से मुताल्लिक जो इल्म है अगर वो मैंने हासिल नहीं किया है कि उस अमल को अंजाम देने का तरीका क्या है वो मैंने सीखा नहीं है तो वो काम मैं अंजाम नहीं दे सकता। तो हर चीज चाहे वो कौल हो या अमल हो उससे पहले इल्म जरूरी है। तो गोया सब की बुनियाद जो है वो इल्म है, इसीलिए अल्लाह तबरक तआला ने सबसे पहले वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई उसमें जो हुक्म दिया वो यही दिया, इकरा पढ़ो, पढ़ो यानी इल्म हासिल करो। गोया इल्म के हासिल करने को इस हुक्म के जरिए से जरूरी करार दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिम, कि हर मुसलमान के ऊपर इल्म का हासिल करना फर्ज है। यानी जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, जैसे जकात फर्ज है, जैसे हज फर्ज है, इस्लाम के जैसे अरकान हैं वो फर्ज हैं, इस तरह इल्म हासिल करना भी क्या है, फर्ज है। जैसे वो जरूरी है ऐसे ये भी जरूरी है। बल्कि ये जितने अरकान इस्लाम है, आदमी उन अरकान इस्लाम को अदा करने के काबिल नहीं होगा जब तक कि उनका इल्म हासिल नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं। नमाज जाहिर है, एक मुसलमान बच्चा जब बुलूग को पहुंचता है, बालिग होता है, और बालिग होने पर शरीयत मुतहरा की तरफ से वो अहकाम जो एक मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए गए हैं वो सारे अहकाम उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और वो इस बात का गोया शरीयत की तरफ से पाबंद बनाया जाता है कि आपको ये काम करने हैं। जब तक बालिग नहीं है वहां तक उसको पाबंद नहीं बनाया गया है। रुफियल कलम अन सलासतिन अनिस सबीये हत्ता यबलुगा, हदीस में आता है कि तीन आदमी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर से शरीयत के अहकाम उठा लिए गए हैं, यानी कोई शरीयत का हुक्म उनकी तरफ मुतवज्जे होता नहीं है। उनमें पहला ही बच्चा जब तक के बालिग न हो, बालिग होने पर शरीयत के सारे अहकाम उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो एक मुसलमान बच्चा जब बुलूग को पहुंचता है तो बुलूग बालिग होते ही, बुलूग को पहुंचते ही शरीयत के अहकाम सारे उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। और उनमें भी दो हुक्म तो ऐसे हैं, नमाज और रोजा, जो हर एक के ऊपर, यानी लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो औरत हो, गरीब हो मालदार हो, मुकीम हो मुसाफिर हो, ये दो फरीजे, दो रुकन तो ऐसे हैं कि वो हर एक के ऊपर लाजिम होते हैं। और नमाज की अदायगी के लिए शरीयत ने जिन जिन चीजों को जरूरी करार दिया है, जिसको हम नमाज के फराइज अरकान और शराइज से ताबीर करते हैं। नमाज के बाद फराइज तो वो है कि जो नमाज शुरू करने से पहले हमें अंजाम देने पड़ते हैं, अपने कपड़ों, हमारे कपड़े पाक हैं या नहीं ये देख लेना है, हमारा जिस्म पाक है या नहीं जाहिरी नजासत से और हुक्मी नजासत से, यानी बेवजू या बेगुसल तो नहीं है, जगह पाक है कि नहीं, ये जो नमाज शुरू करने से पहले जिन जिन चीजों को हमें शरीयत की बताई चीजों को पूरा करना है उनको फुकहा की इस्तिलाह में शराइत कहते हैं, और नमाज के अंदर जिनको जरूरी करार दिया गया है, खड़ा रहना, किरात करना, रुकू करना, सद्दा करना, ये भी जरूरी है, उसके बगैर भी नमाज दुरुस्त नहीं होती, उनको अरकान कहा जाता है। और हमारे यहाँ जो है एक आम लफ्ज जो इस्तेमाल होता है फर्ज का, उस शराइत भी फराइज में आ जाते हैं और अरकान भी। यानी एक सवाल जब किया जाएगा कि नमाज के फराइज कितने, तो उसमें वो शराइत को भी शुमार करना पड़ेगा और अरकान को भी, जो अंदर है वो भी और बाहर है वो भी। तो बहरहाल एक आदमी नमाज अदा करना चाहता है तो उसको ये सारी पाबंदियां यानी ये सारी चीजें मुकम्मल करनी है। तो जब तक के जानेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं पाकी क्या है, जिस्म की पाकी क्या है, कपड़ों की पाकी क्या है, और फिर जिस्म की जो नजासत हकीकिया है, पेशाब पाखाना और दूसरी चीजें जो आदमी के जिस्म को लगती हैं, उसको किस तरह पाक करेंगे, और नजासत हुक्मिया यानी बेवजू होना, बेगुसल होना, हदस असगर और हदस अकबर, उससे कैसे पाकी हासिल की जाती है, वो सारी तफसीलात जो फिका की किताबों के अंदर लिखी है, तो जाहिर है ये सब उसको सीखना पड़ेगा। उसके बगैर वो नमाज की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा, और शर्तों को जब पूरा नहीं कर पाएगा तो उसकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। तो जाहिर है कि बारिग होते ही जब उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई, नमाज की अदायगी जरूरी हो गई, और नमाज की अदायगी के लिए इन चीजों का सीखना क्या है जरूरी, नमाज के अंदर कौन सी चीज, फिर फराइज तो फराइज है, फराइज के साथ वाजिबात, सुनन, आदाब, मुस्तहबात, यानी नमाज को मुकम्मल तरीके से अदा करने के लिए जो चीजें बतलाई गई हैं, तो सारी चीजें जब तक के सीखेगा नहीं कैसे अदा कर पाएगा। इसलिए गोया जहां ये चीजें उसके ऊपर फर्ज होती उससे पहले उसको उसके लिए क्या करनी चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। गोया लड़का या लड़की बुलूग की उम्र को पहुंचे उससे कुछ पहले गोया उसको ये सारी बातें सिखा देनी चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी भी है, और जो उनके मुरब्बी हैं, परवरिश करने वाले, उनको ये सारी बातें बताएंगे। ये तो नमाज की बात हुई, ये याद रोजे का, रोजे के अंदर जो जो चीजें जरूरी हैं, जिनके बगैर रोजा दुरुस्त नहीं होता है, वो बहरहाल उसका इल्म हासिल करना पड़ेगा। इल्म हासिल करेगा तो फिर वो उसको अमली तौर पर बरत सकेगा, अंजाम दे सकेगा। और फिर अगर कोई आदमी साहिब माल है और इतना माल उसके पास है शरीयत की मुकर्रर की हुई मकदार जिसके ऊपर जकात लाजिम हो जाती है, जिसको निसाब कहते हैं, तो फिर उसके लिए जकात के मसाइल से वाकिफियत हासिल करना भी जरूरी है। ये देखिए, मतलब मेरे कहने का हासिल ये है कि ये सारे जो शरीयत की तरफ से अहकाम है, ये सारे इनका सीखना जब तक सीखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, हासिल नहीं करेगा, वहां तक इन पर अमल नहीं कर सका। तो गोया इल्म हासिल करना तो फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, जकात फर्ज है, हज फर्ज है, ऐसे इन चीजों का इल्म हासिल करना भी फर्ज है, कि उसके बगैर ये फराइज जो है अंजाम नहीं दिए जा सकते हैं। अब गोया ये बात तो तय हो गई कि इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन कितना इल्म हासिल करना फर्ज है। जाहिर इल्म जो है वो एक तो दरियाए नापैदा किनार है, उसकी दीनी उलूम, दुनियावी उलूम, और फिर दीनी उलूम के अलावा दीनी उलूम की बीसियों किस्में हैं, उनकी शाखें हैं, उनकी और शाखें हैं, दुनियावी उलूम की भी बीसियों किस्में हैं। कोई भी आदमी दुनिया का कहा चाहे वो कितना ही जो है बासलाहियत क्यों ना हो, चाहे वो दीनी उल्म हो या दुनियावी उल्म, कामिल पूरे तौर पर हासिल कर सकता नहीं। दुनियावी उल्म के आते हैं, एक आदमी डॉक्टर बना है तो डॉक्टर है, उसको इंजीनियरिंग का इल्म नहीं है, इंजीनियर है तो डॉक्टरी का इल्म नहीं है। अगर वो लॉयर है, वकील है, कानून का उसके पास इल्म है, तो उसको डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का इल्म नहीं है। तो और फिर ये डॉक्टरी के अंदर भी बीसियों किस्में हैं, وہ مختلف شعبے جو ہیں, مخصوص قسم کے ڈاکٹر کو, بھائی آنکھ کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہے, دل کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہے, کان کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہے, تو یہ سارے ایک ڈاکٹر چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, خود اس طب کے ساری شاخوں سے وہ واقف نہیں ہوگا, نہ اس کے لیے ممکن ہے ان ساری چیزوں کو کیا کر سکے. تو یہ دنیاوی علوم اسی طرح دینی علوم کا حال نہیں ہے. سارے دینی علوم کا حاصل کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. تو گویا ایک مخصوص مقدار ہوگی جس کو وہ حاصل کرے, اس کو شریعت کی طرف سے ضروری قرار دیا گیا ہے. تو اب گویا یہ جو ہے شریعت نے کون سے علم کو, جو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا تھا کہ تراویح میں فریضت علی کل مسلم, یہ ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. کون سا؟ ڈاکٹر بننا فرض ہے؟ انجینئر بننا فرض ہے؟ آرکیٹیکٹ بننا فرض ہے؟ نہیں, بلکہ وہ علوم حاصل کرنا جس کو پڑھ کر کے کون سے کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون سے کاموں کو کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے, وہ سیکھنا چاہیے, تاکہ جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کو کرے, اور ان کو کر کے اللہ کو راضی کرے اور جو ہے جنت حاصل کرے, اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے, گناہ کے کام جن سے روکا ہے, ان کو پڑھے سیکھے تاکہ ان سے اپنے آپ کو بچا سکے اور اللہ کی گرفتوں سے اور جو ہے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے. یہ ساری چیزیں, یہ طاعت اور معاصی, ان سے واقفیت حاصل. اور پھر طاعت اور معاصی کی بھی بڑی تفصیلات ہیں, ان میں جو چیزیں فرض ہیں, فرض عین ہیں, ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. نماز فرض عین ہے, اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی مسلمان مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسا نہیں ہے جو یوں کہہ سکے کہ میرے لیے نماز کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں, علم کی اتنی مقدار جس سے وہ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کر سکے. کون کون سی چیزیں نماز میں فرض ہیں, واجب ہیں, سنت ہیں اور مستحب ہیں, آداب ہیں, کون سی چیزیں مکروہ ہیں, تحریمی, تنزیہی, تاکہ ان سے بچ سکے. یہ ساری چیزیں حاصل کرنا جس کے ذریعے سے نماز کی ادائیگی ممکن ہو جاتی ہے, اس کے لیے درست ہو جاتی ہے, وہ سب سیکھنا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری. پھر کون سے کام ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب تک وہ جانے گا نہیں بچ نہیں سکے گا, اور نہیں بچے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی اور فریضہ ادا نہیں ہوگا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت کی طرف سے اس پر لازم کی, یہ تو عبادات کے قبیل سے, اسی طرح شریعت کے اور بھی شاخیں ہیں جو ہے, شعبے ہیں. معاشرت, ایک آدمی نکاح کرتا ہے, نکاح کر کے کسی عورت کو اپنے نکاح کے اندر لاتا ہے, تو اب جب اس کو اپنی بیوی بنا کر کے لایا تو شریعت کی طرف سے وہ کون سے حقوق ہیں بیوی کے جو شریعت نے اس کے اوپر کیا کیے ہیں, لازم کیے ہیں, اس کا جاننا ضروری ہے. جانے گا تو ادا کر سکے گا, نہیں جانے گا تو کیسے ادا کر سکے گا. اور پھر یہ تو اس گویا معاشرت کی لائن سے, معاشرت میں جہاں بیوی ہے وہاں ماں باپ بھی ہیں, ماں باپ کے حقوق کہ ماں باپ کے ساتھ ایک بیٹے کو کس طرح پیش آنا چاہیے, شریعت نے وہ بھی تفصیل سے بتایا ہے. ماں باپ کی اطاعت, فرما برداری, کوئی ایسا کام جو ماں باپ کو تکلیف پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا, ذرا برابر بھی تکلیف ماں باپ کی شریعت کی نگاہ میں ناقابل برداشت ہے, ولا تقل اللہم اوفن. اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرے رشتے دار ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ, یہ تو معاشرت کی بات کر رہا ہوں. پھر جو پڑوسی ہیں, پڑوسی کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے یہ بھی جاننا ضروری ہے, کیونکہ جب رہے گا تو پڑوسیوں سے بھی تو واسطہ پڑے گا نہیں. پڑوسیوں کے بھی حقوق شریعت نے بتلائے ہیں. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے متعلق مجھے اتنی تاکید کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید ان کو وارث بنا دیں گے مال کے اندر. تو یہ ہم سے کوئی ایسی بات پیش نہیں آنی چاہیے جس سے پڑوسی کو کیا ہو, ذرہ برابر تکلیف ہو, ورنہ یہ چیز آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है। तीन मर्तबा कसम खाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की नफी फरमा रहे हैं। आपकी जबान मुबारक से ये जुमले सुनकर सहाबा सहम गए। अर्ज क्या मैं या रसूल अल्लाह कि अल्लाह के रसूल तीन तीन मर्तबा कसम खाकर आप जिसके ईमान की नफी कर रहे हैं कौन? कमन ला यामन जारहु बवायकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तरफ से पहुंचने वाली इजाओं से मामून न हो, यानी जिसको इत्मीनान न हो कि मेरे पड़ोसी मुझे तकलीफ नहीं पहुंची, मामून न हो, यूं कहा महफूज नहीं। ये बलागत देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक तो है महफूज होना यानी उसको तकलीफ न पहुंचे, खाली इतना काफी नहीं है तकलीफ न पहुंचना, बल्कि उसको आपकी तरफ से तकलीफ का अंदेशा भी और डर भी न हो। बाद मर्तबा जो है तकलीफ तो नहीं पहुंचती, लेकिन बाद लोगों का मिजाज नेचर उनकी तबीयत की साख्त ऐसी होती है कि पड़ोसी उनके से हमेशा डरा से हमारा रहता है, पता नहीं क्या कब क्या करना डालेगा। तो ऐसों के मुतालिक हुजूर फरमाते हैं कि वो आदमी मोमिन नहीं है, तो जो तकलीफ पहुंचाते हैं उनका तो क्या शुमार है। तो बहरहाल एक जो है मुसलमान के लिए ये जानना भी जरूरी, आज कितने मुसलमान हैं जो इन सारी चीजों को हासिल करने का एहतमाम और कोशिश करते हैं। एक आदमी जो है वो मामलात की लाइन से तिजारत करता है, कमाने के लिए तिजारत करता है, तो तिजारत से मुतालिक मसाइल का जानना उसके लिए जरूरी है। तिजारत का वो कौन सा तरीका है जिसको शरीयत मुतहरा ने जायज और हलाल करार दिया है, और कौन सा तरीका है जिसको शरीयत ने नाजायज और हराम करार दिया है, तिजारत किस तरह करनी चाहिए। वहां हुजूर फरमाते हैं कि भाई अगर आपके माल के अंदर कोई ऐब है तो आप अपने खरीदने वाले को उस ऐब से आगाह कर दीजिए, वाकिफ कर दीजिए। जो आदमी इससे वाकिफ नहीं करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद फरमाई उसके मुताबिक। तो बहरहाल ये आज जो तिजारत करने वाले हैं वो बहुत से वो हैं जो इन मसाइल से और इन चीजों से वाकिफ नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में तो बाजार में तिजारत के लिए तिजारत का लाइसेंस उसी को मिलता था जो बाकायदा इन तिजारत के मसाइल से वाकिफ हो, ना वाकिफ को लाइसेंस नहीं दिया जाता था, बाकायदा गुमाश्ते फिरते रहते थे और वो बाकायदा इम्तिहान लेते रहते थे। किसका? ये ताजिर का। कोई मसले में घर मालूम हुआ कि इसको मालूम नहीं तो फौरन शिकायत पहुंच जाती थी और उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता था कि अब तुम तिजारत नहीं कर सकते हो। तो बहरहाल ये कहने का अर्थ ये है कि जो काम आप मुलाजमत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मुलाजमत का मतलब क्या है? मुलाजमत का मतलब ये है कि आपने सामने वाले को अपनी खिदमत, अपनी जो काम है वो अपना वक्त उसको क्या कर दिया, तनख्वाह के बदले में बेच दिया कि भाई रोजाना 8 घंटे आप मसलन ये काम जो काम आपको सौंपा गया, आप पढ़ाने का काम करते हैं तो आपको 8 घंटे पढ़ाना है और उस 8 घंटों की तनख्वाह महीने की आपको इतनी दी जाएगी, तो ये 8 घंटे जिनका आपने मामला किया है वो अब आपके नहीं रहे, वो किसके हो गए? जिसने आपको मुलाजमत के ऊपर रखा है वो। अब इन 8 घंटों में आप अपना काम नहीं कर सकते, करेंगे तो ये खयानत हो जाएगी और गोया कमी करना, गोया आपने तो मामला तय करते हुए ये किया कि मैं 8 घंटे की अपनी खिदमत यहाँ लगाऊंगा और आपने उसमें से कटौती कर ली, तो गोया खयानत। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी को आपने 1 किलो गेहूं या 1 किलो शक्कर बेची कितने में, तो कहा 200 रुपये में, और आप उस 1 किलो के बजाय उसको 800 ग्राम शकर देते हैं, यानी तोल में कमी करते हैं जिसको तदफीक कहते हैं, नाप तोल में कमी। कुरान में वही आई वहीफी जो नाप तोल में कमी करते हैं, आप पर जितना हक वाजिब हुआ था वो पूरा हक आपने अदा नहीं किया बल्कि उसमें आपने क्या कर दी, कमी कर दी, आपको पूरा अदा। ऐसे आप मुलाजमत करते हैं, सर्विस करते हैं, तो आपकी सर्विस का जो वक्त मुकर्रर है वो पूरा वक्त आपको लगाना चाहिए। अगर आपने उसमें से कुछ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया तो गया उसने आपने कमी कर दी, अब उतने वक्त की तनख्वाह लेना आपके लिए दुरुस्त नहीं। और आप पूरी तनख्वाह लेंगे तो वह उतनी जो दुरुस्त नहीं थे वो हराम तनख्वाह आपकी इस तनख्वाह के साथ मिल करके आपकी पूरी तनख्वाह को जो है खराब करेगी। पाक पानी के साथ जो है एक कतरा पेशाब का भी लग गया हो तो वो पूरे पानी को नापाक कर देता है। ऐसे ये पूरी कमाई के अंदर गड़बड़ पैदा कर दी इसने। लोग कितना एहतमाम करते हैं इसका। हमारे बुजुर्गों के हालात में लिखा है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दाना भवन के अंदर खानकाह इमदादिया के अंदर मदरसा था, वहां मुदरसिन को रोज नामचा दिया जाता था। तो उसमें बाकायदा अगर कभी सबक के दौरान कोई मिलने वाला आ गया और उसके साथ कुछ दो चार मिनट बात करने के, वो आते ही उसका वक्त नोट कर लेते थे और वो जाता था मिलकर, तो वो नक्त और जितने मिनट उसके साथ बात की उसके अंदर दर्ज कर दिया। और जब महीना पूरा होता था तो वो रोजनामचा बाकायदा हर मुदर्रिस पेश करता था और उसके अंदर जो वक्त उसने कहा यह वक्त पढ़ाई से कट रहा है उतना कटवा कर उतनी तनख्वाह कटवाई जाती। हमारे अकाबिर हजरत शेख माना ज़करिया साहब नवरल्लाह मरकदों ने आपबीती के अंदर सहारनपुर के हजरत मौलाना मजहर साहब नानोती के हालात में लिखा है कि सबक के दौरान कोई आता था तो आपकी किताब के अंदर एक बाकायदा जो है कोरा कागज लिखा पड़ा रहता था, वहां को आया आप फॉर्म नोट कर ले। यानी कोई आपका रिश्तेदार मिलने आता था, कोई मसला पूछने आता था तो नहीं, क्योंकि मसला पूछने जो आए है वो तो मदरसे का काम है, तो कोई रिश्तेदार है तो उतना वक्त नोट कर फिलहाल इतने बजे आया इतने वक्त गया इतने घंटे इतने मिनट जो है अंदर से काम नहीं उसके उतनी तनख्वाह वजा करवा लेते थे। तो बहरा कहने का हासिल ये है कि आप जिस शोबे से भी ताल्लुक रखते हैं उस शोबे से मुतालिक मसाइल का मालूम करना आपके लिए, उसके बगैर आप काम अंजाम नहीं दे सकते, वरना उसका नतीजा ये होगा कि नावाकिफियत की वजह से हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज का कि मुर्तकिब हो जाए जो शरीयत ने जिसकी इजाजत नहीं दी। एक आदमी डॉक्टर है, डॉक्टरी करता है, तो डॉक्टर को चाहिए कि मैं अपने बीमारों को जो दवाई लिख करके दे रहा हूँ उस दवाई में कुछ ऐसे अज्जा तो नहीं है जिसकी इस्तेमाल करने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है, हराम है। और अगर वो है तो ये बीमार की बीमारी क्या इतनी है जिसमें इन चीजों को इस्तेमाल करने की शरीय एतबार से इजाजत और गुंजाइश होती है, वो सारा उसको मालूम होना जरूरी है। उसके बगैर अगर ये करेगा तो वो गुनहगार होगा, शरीयत की हुकूमत के खिलाफ होगा। तो मतलब ये कि जिस शोबे में भी वो काम कर रहा है उस शोबे से मुतालिक वाकिफियत हासिल करना, इल्म हासिल करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। मुलाजमत के अंदर जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मुलाजमत के बाब में भी जरा बराबर भी गफलत बरतेंगे तो आपकी तनख्वाह क्या हो जाएगी, मुश्तबे हो जाएगी, उसमें हराम की मिलावट हो जाएगी। अपने आप को इससे बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है। हमारे असलाब जो है वो तो अपनी एक एक पाई का हिसाब रखते थे ताकि कमाई के अंदर कोई हराम का एक पैसा भी आने ना पाए, और हराम अगर आ जाएगा कमाई के अंदर तो उसका असर जो है पूरी औलाद के ऊपर और अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर पड़ता है, आमाल के ऊपर पड़ता है। इससे अपने आप को खास बचाने की जरूरत है। तो कहने का हासिल ये है कि आदमी जिंदगी के जिस शोबे से भी ताल्लुक रखता है, जो लोगों के आम हुकूक हैं उन आम हुकूक के से भी वाकिफियत जरिए जाहिर, पड़ोसी के हुकूक में भाई एक पड़ोसी मुस्तकिल पड़ोसी है, आपका जहां मकान है आपके मकान के बराबर में उसका मकान है मुस्तकिल पड़ोसी। बाज पड़ोसी वो होते हैं जो जुज वक्ती होते हैं, यानी थोड़ी जो है पार्ट टाइम बसर वक्त के लिए, मसलन आप बस में सफर कर रहे हैं तो आप जिस सीट पर बैठे हैं उसकी बाजू में सीट पर जो बैठा है वो भी आपका क्या हो साहिब बिल जम, कुरान ने उसको ताबीर किया है, उसका हक है। ट्रेन के अंदर भी, ट्रेन के अंदर भी हमें बाल लोगों की आदत होती है कि ट्रेन में पहले पहुंच गए तो दो तीन सीटों के वह बिस्तर बिछा देंगे और खुश हैं, अरे हमने तो इतनी जगह रोक ली और सोते सोते गए, अरे क्या रोक ली, सोते सोते गए, आपने जो किराया अदा किया था वो तो सीटिंग की एक सीट का किराया अदा किया था और आपने तीन सीटों के ऊपर बिस्तर बिछा करके आराम से आप जो सफर किए, ये जो दो सीटों को आपने जायद इस्तेमाल किया शरीय एतबार से आपके लिए क्या था, हराम था, जायज नहीं था। आप यूरोप में चले जाएंगे वो लोग ईमानदार वाले नहीं है, यानी मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है, लेकिन इन उसूल का जो शरीयत ने हमें बताए हैं उनका पूरा एहतमाम, वो ट्रेनों में भी सफर करें बैठे अपनी जगह पर बैठे बैठे, अगर कभी नींद झोंका भी आए तो बैठे बैठे कर लेंगे, लेकिन सीट खाली है तो भी वो पांव पसारेंगे नहीं, क्यों? वो समझते हैं कि दूसरी सीट के ऊपर हमारा हक नहीं। हमें ये मसला शरीयत ने बताया था लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। हमारी तरफ से अमाल की अदायगी के अंदर वो सारी रफलतें होती। हालांकि इसी तरह जो आम हुकूक है, अगर हम मस्जिद में आए, मस्जिद में जहाँ जूते निकाले जाते हैं, तो ये जूते अभी मस्जिद में नमाजियों के आने से पहले जूते निकालने की जगहें क्या हैं? खाली हैं। हर जगह जो खाली है उस पर हर एक का हक है, जो पहला है वो अपना जूता वहां पर रखेगा, और जिसने रख लिया अब जब तक कि वो वहां से अपना जूता नहीं उठाएगा वहां तक उस जगह पर उसका हक हो गया। अब हमारे यहाँ लोगों का मिजाज क्या है, वो पहले वाले ने आकर के अपना जूता रखा, वो बाद वाला आएगा उसके जूते को मारा धक्का, वो इधर गया ना अपने जूते वहां कर दो, यही हराम काम कर डाला उसने। पहले वाले ने अपने जूते जहां रखे थे उस जगह के ऊपर उसका हक लाजिम हो गया था। अब जब तक के नमाज खत्म होकर वो अपना जूता वहां से हटाएगा नहीं वहां तक उसका हक उसके ऊपर बाकी है। बाद वाला आकर उसके जूते को हटाकर अपने जूते रखना चाहता है तो वो उसकी जान दुरुस्त। हमारे अकाबिर के यहाँ इसका कितना ज्यादा एहतमाम होता था। हजरत मौलाना शाह मसीहुल्लाह साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है, एक मरतबा वो मदरसे से घर जा रहे थे तो जो सफाई करने वाला म्यूनिसपालिटी का आदमी है वो रास्ते की सफाई कर रहा था, किसी ने उसको रोकना चाहा, उसको मत रोको, अपना काम कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी बजा रहा है, हमें उसको रोकने का हक नहीं। तो कहने का हासिल यह है कि ये हम जो है नावाकिफियत की वजह से बाद लोग अपने जाम में अच्छे और नेकी के काम करते हैं। एक साहब जो है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उन्होंने क्या कहा कि देखो मैं जिस हुकूमत के जिस शोबे में काम करता हूँ उस शोबे की तरफ से मुझे ये सहूलत हासिल है कि मैं अगर बीमार हूं या मेरे घर में कोई बीमार है तो उसकी जो दवाई खरीदी गई है वो बिल अगर मैं पेश कर दूं अपने शोबे में तो पूरी कीमत मुझे उनकी तरफ से मिल जाती है। तो मैं जो है उससे ये फायदा उठाता हूं कि अपने जो दोस्त लोग हैं पड़ोसी हैं उनको भाई तुम्हारा अगर कोई बिल आया हो तो मुझे दे देना और मैं वो बिल ले करके वो रकम हासिल करके तुमको पहुंचा दूंगा। वो अपने जाम में तो यूं समझ रहे थे बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, खिदमत अपने पैसों से करोगे करनी है। ये जो है हलवाई की दुकान पे नानी अम्मा के पास जिया किसने तो हजरत से जब उसने ये बात कही कि इस तरह मैं करता हूँ अल्लाह के बंदों की खिदमत करता हूँ तो हजरत ने पूछा उससे अच्छा ये बात बताओ कि क्या तुम्हारे इस महकमे ने जिसमें तुम्हारा ये है काम करते हो जिनको ये तुमको ये दिया है सहूलत दी है क्या आपको इसका इख्तियार दिया है क्या आप अपने पड़ोसी अपने दोस्त अपने रिश्तेदार उनका बिल भी दाखिल करके जो है उसकी रकम वसूल कर दे? नहीं सर। तो फिर कहा आप जो काम कर रहे हैं वो जायज ही नहीं है, हराम है, और उसको तो आप नेकी समझ रहे हैं। तो कभी आदमी लाइनी और जहालत की वजह से हराम काम को भी क्या समझ रहा है नेकी। ये देखो शैतान कहाँ पहुंचा रहा है। तो हकीकत तो ये है कि बहुत जरूरत है इस बात की, इसीलिए शरीयत ने इल्म हासिल करने को गोया बहुत जरूरी करार दिया, तिजारत का हुक्म दिया, लेकिन तिजारत के उसूल बतलाए, उस उसूल के मुताबिक आपको तिजारत करनी है, मुलाजमत उनका लिहाज करना, कमाई आपकी कमाई में हराम शामिल न हो जाए इसको आपका इसका आपको पूरे पूरा क्या करना है ख्याल रखना है। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि जिंदगी के अंदर कौन सी वो चीज है तो जिसके अंदर इल्म की जरूरत पेश ना आती हो, कदम कदम पर इल्म की जरूरत है। यानी इल्म का मतलब ये कि शरीयत ने इसके लिए क्या हुक्म दिया। आज तो हमारा हाल आम तौर पर ये है कि हम इसकी जरूरत ही महसूस नहीं करते कि भाई इसके मुतालिक मालूम करें कि इस मामले में शरीयत का हमें क्या हुक्म दिया गया है। तो बहरहाल यहाँ अल्लाह तबरक तआला ने इस पहली ही वही में जो हमें फरमाया के कहा गया इकरा, गया इल्म को हासिल करने को जरूरी करार दिया गया, वो कहने का तो एक छोटा सा लफ्ज है लेकिन उसे सारी जिंदगी के तमाम शोबे आ जाते हैं। और जब तक के आदमी इन चीजों के मुताल्लिक शरीयत मुताहरा के जो अहकाम है उन अहकाम को जब तक के वो पूरे तौर पर जान न ले वहां तक वो अमल कर पाएगा तो उसका जानना उसके लिए जरूरी है। तो ये सबक है हमारे, ये पहली ही वही में ये सबक दिया गया हमें कि भाई तुम अपनी जिंदगी को अल्लाह की खुश रजा और खुशनुदी के मुताबिक, अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक जो है रब चाही गुजारना चाहते हो, मन चाही नहीं, तो रब चाही गुजारने के लिए रब का क्या हुक्म है वो तो मालूम करना पड़ेगा ना, उसको मालूम किए बगैर कैसे गुजार सकते हो। इसलिए ये बहुत अहम है। लोग जो है वो बोलने को तो बहुत बोल देते हैं लेकिन अमल के मैदान के अंदर जब ये मौका आता है तो हम हमारी तरफ से बड़ी गफलत होती है, जरूरत है कि इसका एहतमाम किया जाए। बहरहाल ये लफ्ज इकरा कहने को तो बहुत एक छोटा सा लफ्ज है लेकिन यूं समझिए कि पूरी शरीयत इसके अंदर आ जाती है। हमें तंबीह कर दी गई कि भाई जो आप जो है अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारना चाहें तो पहले आपको उसका इल्म हासिल करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक तआला हम सब को जो है उन सारे शरीयत के तकाजों को जानने समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तो पहला ही मरहला जो जानने और समझने का है उसी में फेल है। हमारी जिंदगी के बहुत से शोबे ऐसे हैं उन शोबों में शरीयत ने हमें क्या हिदायत दी है वो हम जानते ही नहीं, तो अमल क्या करेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। पर एक बात अर्ज करनी रह गई, वो बाद लोग सवाल करेंगे कि भाई अब हमें तो मालूम नहीं है अभी इस बुढ़ापे में या इस उम्र में कहाँ मदरसे में दाखिला लेंगे। तो मदरसे में दाखिला लेने की जरूरत नहीं है, हर शोबे से मुतालिक जो मालूमात है वो उलमा ने किताबों में लिख दी है, आप उनका मुताला कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखो दुनिया आपको या दुनियावी एतबार से एक जमीन खरीदना चाहते हैं और जमीन खरीदने के सिलसिले में आपके पास किस नौ के कागजात होने चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, ये सब मालूम करना होगा तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ, वकील के पास। और वकील जो मालूमात बताएगा मुफ्त में नहीं बताएगा, वो तो कह देगा कि आठ घंटे के इतने पैसे लूंगा मैं। लेकिन अल्लाह ताला का कितना करम और एहसान है कि इस्लामी अहकाम को मालूम करने के लिए आज भी आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ये जितने मदरसे हैं वहाँ दारुल इफ्ता मौजूद हैं, दारुल इफ्ता में मुफ्ती लोग तैयार बैठे हैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए कि भाई वो आओ पूछो, कोई पैसा उस पर लिया नहीं, कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो अभी कोई जाने की जहमत गवारा करता नहीं। तो हकीकत तो ये है कि कल को अल्लाह के यहाँ हमारे पास कोई उजर नहीं होगा कि हम यूं कह दें कि हमें ये मालूम नहीं था, बतलाने वाले भी मौजूद थे। वैसे भी दुनिया का दस्तूर है कि कानून से नावाकिफियत कहीं उजर करार, आपने ट्रैफिक के किसी कानून के खिलाफ वर्जी की, पुलिस ने पकड़ लिया और जो है अदालत में पेश कर दिया और आपके ऊपर जुर्माना आयद किया, आप वहां जज से यूं कहें कि जज साहब मुझे ये कानून मालूम नहीं था, तो आपका ये उजर कबूल, आप इस मुल्क में रहते हो आपको ये कानून मालूम होना चाहिए था, और यहाँ तो कानून बतलाने के लिए आपको भी मालूम करने के लिए पैसे, यहाँ तो इस्लामी कानून मालूम करने के लिए पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं। आज भी इस जमाने में भी आपको सारे मुफ्त में बतलाने वाले मौजूद हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غیر ضالین ولا مدلین سلم لأولیائک و حرم لأعدائک نحب بحبک من احبک و نعادی بعداوتک من خالفک من خلقی اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی ہمیں کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری اے اللہ روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.